तफसीर सूरत सबा की आयत नंबर 40 से 45 तक। यहाँ पे अल्लाह ताला जो है, जो मुत्रफीन थे, जो अमीर थे, जो दौलतमंद थे, उनको मुखातिब करके कह रहे हैं कि तुम फरिश्तों को माबूद बनाकर जो इनकी परस्तिश कर रहे हो और ये समझते हो कि आखिरत के दिन ये तुम्हें बचा लेंगे, लेकिन याद रखना कि आखिरत के दिन जो है ये तुम्हारे काम नहीं आ सकते, कोई अल्लाह के अजाब से जो है वो बचा नहीं सकता। और ये आयत नंबर जो 40 है, इसका ताल्लुक पीछे आयत नंबर 31 से है। वयौम यहशुरुहुम जमीअन थुम्मा यकूलु लिलमलाइकति हाउलाई इय्याकुम कानू यअबुदून। और जिस दिन वो तमाम इंसानों को जमा करेगा, हशर का मतलब क्या है? हांकना, और उसके बाद जो है हांकर उनको जो है वो इकट्ठा कर देना। जमीन ताकीद के लिए है, क्योंकि हशर के अंदर भी जब सबको इकट्ठा किया जाता है तो क्या है कि सबको जमा किया जा रहा है ना, लेकिन जमीन फिर दोबारा आया। और जिस दिन वो सबको जमा करेगा, थुम्मा यकूलु लिलमलाइकति, फिर वो फरिश्तों से कहेगा अहाउलाई, क्या ये है इय्याकुम, तुम ही कानू याबुदून, कि तुम्हारी ही ये इबादत किया करते थे, क्या ये लोग तुम्हारी इबादत करते थे, अहाउलाई, क्या ये लोग इय्याकुम तुम्हारी ही कानू याबुदून इबादत करते थे। आप देखें कि पीछे आयत नंबर 31 में आपने क्या पढ़ा था, उसका तर्जुमा इस तरह से है कि उन्होंने कहा था ना कि हम कुरान को नहीं मानेंगे और ना इसे पहली आई हुई किताब को तस्लीम करेंगे, और उस वक्त वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम धरेंगे, उस वक्त वो एक दूसरे के ऊपर तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फिर अल्लाह उस वक्त जो है वो फरिश्तों से पूछेगा, क्या ये लोग तुम्हारी इबादत किया करते थे? फालू, फरिश्ते जवाब देंगे, सुभानका अंता वलीयुना मिन दूनहिम, पाक है आपकी जात, हमारा ताल्लुक तो आपसे है, अंता वलीयुना, आप हमारे दोस्त हैं, मिन दूनहिम, इनके अलावा, यानी हमारा ताल्लुक आपसे है, इन लोगों से नहीं है, बल्कि अनु याबुदून अल जिन, ये हमारी नहीं बल्कि जिन्नों की इबादत करते थे, अक्सर हम बिहिम मुमिनून, इनमें से अक्सर उन्हीं पर ईमान लाने वाले थे। तो हर जमाने में, हर दौर में मुश्रिकीन ने फरिश्तों को जो है वो देवी और देवता करार दिया और फिर उनकी मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा की, या फिर ये कि किसी को फरिश्तों का, किसी फरिश्ते को बारिश का खुदा और किसी को बिजली का, किसी को हवा का और किसी को फिर जिंदगी और मौत का। तो कुरान में सूरत अल फुरकान आयत 17 को भी आप पढ़ सकती हैं। अब यहां पर जो है यही बात जो है ये बताई जा रही है कि अल्लाह ताला उन तब कयामत के दिन जो है सारे इंसानों को जमा करके फिर फरिश्तों से पूछेगा कि ये इंसान तुम्हारी इबादत करते थे, तो फिर फरिश्ते कहेंगे कि आप हमारे अल्लाह हैं, यानी हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, हमने तो ऐसी कोई बात कही नहीं, बल्कि ये जिन्नों की इबादत करते थे, उन पर ईमान लाने वाले थे। कल यौम ला यमलिकु बादुकुम लिबादिन नफ़अं वला दर्रा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं उस वक्त हम कहेंगे आज तुम में से कोई ना किसी को फायदा दे सकता है और ना ही नुकसान। फनकूलु लिल्लज़ीना ज़लमु, और हम जालिमों से कह देंगे ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ, के चखो इस जहन्नुम की आग का मजा, इसका अजाब। अल्लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, वो जिसे तुम झुटलाया करते थे। तो उस दिन जो है वो अल्लाह रिजल्ट सुनाएंगे और कहेंगे कि ये तुमने जो कुफ्र किया, ये शिर्क किया, इसके बदले में अब जलने वाली आग का मजा चखो, इसलिए कि तुम इनकार किया करते थे। किसका इनकार? कयामत का, आखिरत की जवाबदेही का, जजा सजा का। आयत नंबर 43 है, 43, और इसी बात को और जबरदस्त तरीके से पेश किया गया है। वाइजा तुतला अलेहिम, और जब सुनाई जाती थी इनको आयातुना, हमारी आयात बय्यिनातिन, खुली खुली, इन लोगों को जब हमारी साफ साफ आयात सुनाई जाती थी, कालू, तो ये कहते थे मा हाजा इल्ला रजुलुन, नहीं है ये शख्स मगर, मुराद है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये शख्स जो है बस यही चाहता है यसुद्दकुम कि वो रोक दे तुमको। अम्मा कान याबुदु आबाकुम कि ये शख्स यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि ये शख्स बस ये चाहता है कि तुम्हें तुम्हारे माबूदों से रोक दे। सद्दा या सुद्दू का मतलब होता है रुकना भी और रोकना भी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उस वक्त इनकार करने वाले रसूल अल्लाह के बारे में ये कहते थे कि इसका मकसद कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि तुम्हें तुम्हारे माबूदों से रोक देना। वकालू और ये कहते हैं कि मा हाजा इल्ला इफ्कुम मुफ्तरा कि ये कुरान हाजा जो है ना इसके साथ आप कुरान लिख लें कि ये कुरान जो है क्या है नहीं है मगर इफ्कुन झूठ मुफ्तरन घड़ा हुआ कि ये कुरान जो है कि महज एक झूठ है घड़ा हुआ। वकाल अल्लज़ीना कफरू और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया लिल हक की कुरान के बारे में यानी काफिरों के सामने जब कुरान आया तो इन्होंने कुरान को देखते ही ये कहा यानी लम्मा जाहुम जब इनके सामने आया इन हाजा इल्ला सिहर मुबीन ये तो एक सरी जादू है। वमा आतेनाहुम मिन कुतुबिन यदरुसूनहा हालांकि ना हमने इन लोगों को पहले कोई किताब दी थी कि जिसे ये पढ़ते हों। वमा अरसलना इलेहिम कबला का मिन नजीर और ना तुमसे पहले इनकी तरफ कोई मुतनब्बे करने वाला ही भेजा था। अब आप देखें कि यहां पर जो है इनकार करने वालों की जो रविश बताई जा रही है उसमें जो है वो पहली बात क्या है कि रसूल के दावा का मकसद बुतों से रोकना है। दूसरी बात कुरान झूठ है घड़ा हुआ। तीसरी बात उन्होंने कुरान को जादू कहा। उन्होंने कहा बस ये जादू है। अल्लाह ताला कहते हैं कि इनको जो पहले किताबें दी गई थी ऐसा नहीं था कि उसके अंदर उन्होंने कोई ऐसी बात पढ़ी हो कि किताबों के अंदर ये चीज हो कि ये शिर्क करें या फिर ये कि उन किताबों के अंदर कोई ऐसी बात हो कि कुरान जो है ये जादू है या झूठ है या रसूल सही बात नहीं कर रहे। तो कोई भी ऐसी तालीम तो इनको ऐसी नहीं दी गई थी। फिर हुआ क्या फिर हुआ क्या فَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ इनसे पहले गुजरे हुए लोग भी झुटला चुके हैं। وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاكُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ وَمَا بَلَغُوا और नहीं ये पहुंचे। मिशारा मिशारा जो है इसका रूट है عَيْن شِين را इसके एक मानी होते हैं कि दसवां हिस्सा। दसवां हिस्सा अशर 10 को कहते हैं ना तो ये कसरी आदात के तौर पे भी इस्तेमाल होता है दसवां हिस्सा। दूसरे इसके मानी है सौवां हिस्सा अशरुल अशर यानी 10 का भी दसवां हिस्सा यानी सौवां हिस्सा। तीसरे इसके मानी है अशरुल अशीर हजारवां हिस्सा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि एक तो है इन लोगों का झुठलाना जैसे यानी मक्के के लोग जो झुठला रहे हैं तो क्यों झुठला रहे हैं ये अमीर हैं ये सरदार हैं खुशहाल हैं कुवत और शानो शौकत वाले हैं तो इस खुशहाली की वजह से इन्होंने झुठलाना शुरू कर दिया। हालांकि वो कौमें जो इनसे पहले गुजरी हैं और वो इतनी खुशहाल थी इतनी दौलतमंद थी कौमे आद कौमे समूद कौमे सबा और कौमे फिरौन और कौमे नमरूद यानी बहुत ही वो दौलतमंद लोग थे। तो उन्होंने क्या किया था कि जो दौलत अल्लाह ने उनको दी थी ना अहले मक्का दौलत हकूमत उमर सेहत कुवत माल उन चीजों में उन कौमों के दसवें हिस्से को नहीं पहुंचे सौवें को भी नहीं पहुंचे हजारवें को भी नहीं पहुंचे यानी कुछ भी नहीं है इनके बाग और इनके बागीचे और इनकी खुशहालियां। और उनको जो अल्लाह ने इतना कुछ दिया था उन्होंने क्या किया था फकत जबूर रसूली उन्होंने तो मेरे रसूलों को झुटलाया था फकई फकाना नकीर फिर कैसी थी मेरी सख्त सजा यानी फिर उनके झुटलाने की वजह से उनकी कुव्वत, उनकी दौलत, उनकी जिंदगी, उनकी जो सेहत थी, उनकी जो हुकूमत थी, उनके किसी काम ना आई, वो नेस्तो नाबूद कर दिए गए, वो सफाई हस्ती से मिटा दिए गए। फकी फकै ननकीर, फिर कैसी थी मेरी पकड़। तो यहाँ पे दरअसल डरावा है कि सोच लो कि छोटी छोटी अपनी बागीचियां हैं और इस पर तुम फखर किए बैठे हो। कुल इन्नमा आइज़ुकुम बिवाहिदा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो मैं तुम्हें बस एक बात की नसीहत करता हूँ। आइज़ुकुम इसका रूट है वो ऐन ज़ुआ, कि मैं तुम्हें जो हूं बस एक ही नसीहत करता हूं। अंतकूमु लिल्लाही, कि अगर तुम जो है वो खड़े हो जाओ, लिल्लाही अल्लाह के लिए, कि अगर तुम अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ। मसना, मसना जो है इसके मानी है दो दो, कि अगर तुम अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ, मसना दो दो, व फुरादा और एक एक यानी अकेले अकेले, सुम्मा तफक्करू और फिर तुम सोचो, यानी अल्लाह के लिए तुम अकेले अकेले भी और दो मिलकर अपना दिमाग लड़ाओ, सोचो, मा बिस्वाहिबकुम मिन जिन्ना, के आखिर इस साहिब में कौन सी ऐसी बात है जो जुनून वाली हो, कि तुम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनू कहते हो, जादूगर कहते हो, दीवाना कहते हो, तुम अकेले अकेले भी और दो दो मिलकर भी, जरा सोचो तो सही कि तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कौन सी ऐसी चीज लगती है जो कि जुनून वाली हो, जो कि दीवानगी वाली हो। अब यहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अहले मक्का जो इल्जामात लगाते थे, तो अल्लाह ताला ने उन्हें गौर व फिक्र की दावत दी है, क्योंकि नबूवत से थोड़ी मुद्दत पहले का वाकया है। तामीर काबा के बाद हजरे अस्वद जब नसब करने की बात आई तो कुरैश के लोग आपस में लड़ पड़े। उस वक्त उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना जज मुकर्रर किया था और आपने अकलमंदी की बिना पर, हिकमत की बिना पर बड़ा अच्छा फैसला किया कि कौम के लोग मुतमिन हो गए। वो क्या कहते थे, हाजल अमीन रदीनाहू, कि ये है अमीन और हम इस पे राजी हो गए। और जो ही आपने जो है वो नबूवत का पैगाम दिया तो फिर मजनू कहना शुरू कर दिया। अच्छा, अब आप देखें कि यहाँ पर ये मसना और फुरादा का जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, और ये जो है ये भी गिनती के लिए ये इस्तेमाल होता है ना, और गिनती आपने पढ़ी है, जैसे वाहिद भी आता है ना, वाहिद, वाहिद जो है जैसे अहद वाहिद, और इसी तरह एक एक के लिए जो है ये आता है फुरादा, और दो दो के लिए आता है मसना। ये फाल के वजन पर आता है, जैसे एक एक, दो दो, और तीन तीन, चार चार। तो इसके मानी क्या होते हैं, ये जो गिनती होती है, ये गिनती जो है ये तादाद वाली गिनती जो है वो कहलाती है ना, जैसे दो दो, तीन तीन, चार चार। तो गिनती जो है कई तरह से होती है, अददी गिनती भी होती है, कसरी गिनती होती है। जैसे आप देखेंगे ऐसा भी होता है कि जैसे आप बटा करके कहते हैं ना, कि एक बटा दो, एक बटा तीन, वन थर्ड, वन टू। तो जैसे अभी हमने मेशार का लफ्ज पढ़ा, जैसे दसवां हिस्सा, सौवां हिस्सा, तो ये भी कसरी गिनती है, जैसे एक चीज का फिर मजीद कुछ हिस्सा ना, तो उशर में शार, तो ये उसमें आ गया। और ये जो एक एक दो दो है ये फुआल के वजन पर है, और इसको तादाद वाली गिनती कहते हैं, कि एक एक या दो दो या तीन तीन या चार चार, यानी इस तरह से ये गिनती आती है। और वाहिद इसनैन है ना, इसी से इसनैन से ही जो है वो मसना का लफ्ज है, और इसका रूट आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, सा नून या, सा नून या इसका रूट है। सानी इस नैन, आपने सूरत तौबा में पढ़ा था, दो में का दूसरा, दो में का दूसरा, वहां पे आपने जो है वो पढ़ा था, जब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह उन्हों के बारे में पढ़ा था और आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा था, तो वहां आपने ये पढ़ा था। अच्छा, तो आपको ये बात पता चल गई कि मसना जो है इसका रूट है सा नून या, और फुरादा जो है इसका रूट है फारा दाल। अल फुरदा तो की जमा है फुरादा, और फर्द नहीं होता, फर्द तन्हा को कहते हैं ना, तो एक एक अकेला अकेला, तो अकेले अकेले या दो दो मिलकर सोचो तो सही कि आखिर तुम्हारे साहिब में यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तुम्हें कौन सी ऐसी बात लगती है जो कि जुनून वाली हो। इन हुआ इल्ला नजीरुल्लकुम बैना यदई अजाबिन शदीद। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? नहीं है मगर वो एक डराने वाले तुम्हारे लिए ऐसे शदीद अजाब के बारे में जो कि आगे तुम्हारे पास आने वाला है, यानी वो तो एक सख्त अजाब की आमद से पहले तुम्हें जो है वो डरा रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते थे लोगों को? कयामत से डराते थे। वो तो आखिरत की बात करते थे, वो कोई दुनिया से मोहब्बत थोड़ी करने वाले थे, वो कोई अपना फायदा थोड़ी चाहते थे। मा सअलतुकुम मिन अजरिन फहुवा लकुम। फिर आगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के बारे में है, ये आयत नंबर 47 है कि कुल ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि मा सअलतुकुम, मैंने नहीं सवाल किया तुमसे मिन अजरिन किसी अजर तनख्वाह मुआवजे का, फहुवा लकुम वो तुम्ही को मुबारक। यानी मुझे तो कोई दुनिया थोड़ी चाहिए, कोई तुमसे मैं मुतालबा नहीं करता, यानी वो तुम्हें ही मुबारक। इन अजरिया इल्ला लल्लाह, मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मा है। वह हुआ अला कुल्ली शय इन शहीद, और वो हर चीज पर गवाह है। अब आप देखें कि यहां पर जो है पैगंबरों का स्लोगन बताया गया है, उनका नारा, कि उन्होंने जो काम भी किया सिर्फ और सिर्फ जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए किया, यानी अल्लाह की रजा, और उनकी जिंदगी का कोई और मकसद नहीं था। और रब की रजा और अल्लाह को राजी करना जो है यही एक मुसलमान की जिंदगी का मकसद है, और ऐसा करने वाले ही जो है वो कामयाब रहते हैं। तो इस पर हम सबको भी अपना अपना जायजा लेना चाहिए, अपना अपना मुहासबा करना चाहिए कि जब आप कोई काम करती हैं, जब आप किसी की मदद करती हैं, किसी को मशवरा देती हैं, किसी दुखी के काम आती हैं, आप कुछ भी करती हैं, या आप दावा कर रही हैं, या आप जो हैं बहुत अच्छी स्पीकर हैं, बहुत अच्छी राइटर हैं, आप बहुत अच्छा रिलीफ का काम कर रही हैं, आप इंसानियत की खिदमत कर रही हैं, तो अपने आप से पूछना चाहिए कि मेरा जो है वो मकसद क्या है, मेरी नीयत क्या है, मेरी इंटेंशन क्या है। तो यहाँ पे वही वाली बात जो मैं पहले भी कहा करती हूँ कि यहाँ नीयत को फल लगता है पेड़ों से ये कह देना, यहाँ नीयत को फल लगता है पेड़ों से ये कह देना, उसे कुछ भी नहीं मिलता जो नीयत हार देता है। चमक दरकार है तुझको तो जर्रे की तरह हो जा, चमक दरकार है तुझको तो जर्रे की तरह हो जा, पहाड़ों को हमेशा वो अंधेरे गार देता है। तो जो रब की रजा चाहते हैं तो उन्हें अपने आप को मिटाना होगा, उन्हें अपनी नियत के अंदर जो है वो इखलास पैदा करना होगा, रब की रजा पैदा करनी होगी। तो पैगंबर जो थे वो क्या करते थे? वो जो है वो आने वाले दिन यानी कयामत के दिन से डराते थे। नंबर दो, वो कोई दुनिया नहीं चाहते थे, वो कहते थे हमारा जो अजर है हमारे अल्लाह के पास है। वह हुआ अला कुल्ली शय शहीद, और वो हर चीज पर गवाह है। यानी तुम हमें जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले मक्का मजनू दीवाना शायर काहिन जादूगर कह रहे थे, तो इल्जाम लगाने वाले कुछ भी कहते रहे, अल्लाह सब जानता है, वो गवाह है कि हमारा मकसद जो है सिर्फ अल्लाह के दीन का पैगाम तुम तक पहुंचाना है। कुल ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, इन्ना रब्बी, बेशक मेरा रब, यक्ज़िफ़ु बिल हक, अल्लामुल गुयूब, यक्ज़िफ़ु, यक्ज़िफ़ु जो है इसका रूट है काफ ज़ाल फा, और कज़फ जो है इसका मतलब होता है फेंकना, इल्का करना। आपने सूरत नूर में भी पढ़ा था ना, काजिफ, मकजूफ और कज़फ, तो इसके लफ्जी मानी होते हैं फेंकना, इल्का करना। और यहां पर जो है इसके मानी क्या है, यहाँ पे ये दो मानों में इस्तेमाल हुआ है, यानी जो इल्मे हक है, जो वही का पैगाम है, जो अल्लाह का पैगाम है, वो क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप लोगों से कह दीजिए कि बेशक मेरा रब जो है वो हक को इल्का करता है, यानी हक जो है वो अल्लाह ही फेंकता है, यानी ऊपर से उतारता है, नाजिल करता है। यहाँ पे इस तरह इस मानी में है कि हक जो है अल्लाह उतारता है, इल्का करता है, फेंकता है। अल्लामुल गुयूब, वो तमाम पोशीदा हकीकतों का जानने वाला है, तो वही के जरिए इल्मे हक वो मेरे ऊपर इल्का करता है। इसके माने क्या है कि हक को वो गालिब कर रहा है, बातिल के सर पर हक की चोट लगा रहा है, यक्सिफु बिल हकी, हक को बातिल के सर पर उसकी चोट लगा रहा है, हक को उस पर फेंक रहा है, उंडेल रहा है। अल्लामुल गुयूब, तमाम पोशीदा हकीकतों का जानने वाला। कुल जा अल हक्कु वमा युब्दिउल बातिलु वमा युईद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए हक आ गया और अब बातिल के लिए कुछ नहीं हो सकता। वमा युब्दिउल बातिल, यानी जब हक आ गया है, वमा युब्दिउ, और ना ही पहली बार पैदा कर सका अल बातिल, तमा योईद, और ना ही वो दोबारा इयादा करेगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि माबूदे बातिल जो है ना तो पहली बार पैदा कर सके और ना दोबारा पैदा करेंगे। तो असल बात क्या है कि हक जो है वो क्या है कि वो जो अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, दीने हक। तो जब दीने हक आ गया तो बातिल जो है वो खत्म हो गया। तो यहाँ पर भी यही बात कही जा रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी लोगों के सामने इस बात को रख दीजिए कि अब हर तरफ हक गालिब है, और अल्लामुल गयूब, अल्लाह को पता है कि हक गालिब होगा, यानी आइंदा भी हक बढ़ेगा, जैसे फतेह मक्का, और कुरान में भी जो है वो फतेह मक्का की और मुसलमानों की फतुहात की खुशखबरी दी गई थी, और कुरान में कई जगह है कि जा अल हक व जहक अल बातिल इन अल बातिला ताना जहू का। तो यहां पर भी यही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो हक को नाजिल किया, हक आ गया, हक सच्चा है, और जो झूठ है, जो माबूद है, जो बातिल है, वमा युब्दे उल बातिलु, वो तो किसी चीज को पैदा नहीं कर सके, वमा युईद, और ना ही कभी पैदा करेंगे। कुल इन दलल तू, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, इन दलल तू कि अगर मैं गुमराह हो गया, फ इन्नमा अदिल्लु अला नफ्सी, तो मेरी गुमराही का गुनाह मुझ पर है, व इन्हे तदई तू, और अगर मैं हदायत पर हूं, फबिमा यू ही इलैया रब्बी, अगर मैं हदायत पर हूं तो उस वही की बुनियाद पर हूं जो मेरा रब मुझ पर नाजिल करता है, इन्नहु समीउन करीब, बेशक वो सब कुछ सुनता है और करीबी है। तो यहां पर भी जो है वो बड़े मुख्तसर अंदाज में जो है ये बात बताई जा रही है कि दीन के मामले में जो है कोई कंप्रोमाइज नहीं है, भलाई अल्लाह के हाथ में है और वो वही में है, कुरान में है, रुश्दे हदायत इस्लाम में है, तो सही रास्ता उन लोगों को मिलता है जो सही रास्ते पर चलना चाहते हैं और उनका अपना ही फायदा है, और जो गुमराह होता है अपनी कोताही से, अपनी ख्वाहिशात नफ्स से, और उसका खुद ही जो है नुकसान होता है। तो इससे क्या बात पता चलती है कि इंसान जो है वो अपने अमलों का खुद जिम्मेदार है। यहाँ पे यही बात जो है वो कही जा रही है कि आप इस बात का ऐलान कर दीजिए कि अगर मैं गुमराह हो गया तो मेरी गुमराही का वबाल मुझ पर है, और अगर मैं हदायत पर हूं तो उस वही की बिना पर हूं जो मेरा रब मुझ पर नाजिल करता है। और मेरा रब कैसा है? इन्नहु समीउन करीब, इन्नहु समीउन करीब, वो सब कुछ सुनता है और करीबी है। इसके माने ये हैं कि यहां पर अल्लाह ताला की तरफ से कुर्बत का इजहार किया जा रहा है कि अल्लाह ताला जो है वो दूर नहीं है, अल्लाह ताला सुनने वाले हैं और करीब हैं। तो जैसे बहुत से लोग हैं, अगर आप अमली जिंदगी में भी देखें कि वो मुश्किल में है, परेशानी में है, तो क्या करते हैं कि खुद नहीं दुआ करते, लेकिन जो है वो दूसरों से कहेंगे कि आप हमारे लिए दुआ करें कि आप बहुत पहुंचे हुए हैं। तो ठीक है, किसी को नेक समझे, जरूर हमें दुआ के लिए कहना चाहिए, अल्लाह ताला नेक लोगों की दुआ कबूल करता है, लेकिन इसके साथ ही अहम बात यह है कि हमें खुद भी दुआ करनी चाहिए, क्योंकि जो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, दुखी है, परेशान हाल है, अपने दामन को फैलाता है, तो अल्लाह उसकी दुआओं को भी सुनता है। अल्लाह शाह रग से ज्यादा करीब है, और अल्लाह जो है फिर वो कबूल करता है। फिर आप देखिए कि आयत नंबर जो 51 है, यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो शिर्क करने वाले हैं, जो हक की मुखालफत करने वाले हैं, इन्हें बहुत ही पुरजोर तंबीह की है, इन्हें डराया है कि अब भी मौका है, संभल जाओ, वरना जब कयामत का दिन आएगा तो फिर जो है उस वक्त कोई शख्स जो है वो संभल नहीं सकता, फिर कोई चांस नहीं है। वला उतरा, और काश के तुम देखो, इज फजेऊ, जब ये घबराए हुए होंगे, यानी ऐसा सख्त वक्त होगा कि उस मौके पर ये सब घबराए हुए होंगे, फला फौता व उखिजू मिन मकानिन करीब, तो उस वक्त जबकि ये लोग जो है घबराहट की हालत में होंगे, तो फला फौता, बस बच नहीं सकेंगे, फौत हो जाना जैसे गायब हो जाना, तो अब वो जो है घबराहट की हालत में कहीं बच कर नहीं जाएंगे, वह ओखेजू और पकड़ लिए जाएंगे, मिन मकानिन करीब, करीब ही से। अब यहां पे क्या कहा जा रहा है कि हशर के मैदान में लोग जो हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं भाग जाएं, बल्कि अल्लाह के फरिश्ते उनको पकड़ लेंगे। और एक राय यह है कि मौत के वक्त, जब मौत का वक्त होता है तो इंसान भागना चाहता है, इंसान की रूह जो है वो छुपना चाहती है, लेकिन मुनकर नकीर जो है आगे बढ़कर उसे जो है वो पकड़ लेते हैं। वह उखिजू मिन मकानिन करीब, तो करीब ही से पकड़ लिए जाएंगे। तो एक राय ये है कि इससे मुराद जो है वो मौत के वक्त, दूसरी राय ये है कि कयामत के दिन, कि जरा मुजरिम ने भागने की कोशिश की तो भाग ही नहीं सकता, फौरन धर लिया गया। वकालू आमन्ना बिही, और उस वक्त ये कहेंगे कि हम इस पर ईमान लाए होते। बिही की जमीर कुरान के लिए है और रसूल के लिए है। वह अन्ना लहुम, और क्यों कर होगा इनके लिए, अत्तनावशु बिन मकानिन बईद, हालांकि अब दूर निकली हुई चीज कहाँ आ सकती है। तो उस वक्त इनके लिए जो है वो दूर की जगह से तनावुश कैसे हो सकेगा? तनावुश जो है ये पकड़ने को कहते हैं, नून वो शीन, किसी चीज को पकड़ना, हाथ बढ़ाकर किसी चीज को उठा लेना। आप उर्दू में भी कहती हैं कि जो नोश कीजिए, तनावुश फरमाइए, तनावुल यानी आप पकड़िए और खाइए। तो नून वो शीन के मानिए है किसी चीज को हाथ बढ़ाकर उठा लेना, पकड़ लेना। वह अन्ना लहमु तनावुशु, तो उस दिन मुजरिमों के लिए ईमान को पकड़ना किस तरह मुमकिन होगा? तनावुश किसको पकड़ना? ईमान को, अमले स्वाले को। तो ईमान और अमले स्वाले आप ब्रैकेट में लिख लें कि उस दिन इनके लिए जो है वो ईमान लाना, अमले स्वाले करना, उसको पकड़ना जो है वो क्या होगा, मिम मकानिम बईद, दूर निकली हुई जगह होगी, दूर निकली हुई बात, मुमकिन नहीं होगा, कोई सपली नहीं है, कोई चांस नहीं है। फकद कफरू बही मिन कबलू, और इससे पहले ये कुफर कर चुके थे। फयक सिफून बिल गईबी मिन मकान बईद, और बिला तहकीक दूर दूर की कोड़ियां लाया करते थे। फयक सिफून काफ जाल फा, और इसके मानी तीरंदाजी के भी हैं, पत्थर मारने के भी हैं, और किसी पर इल्जाम लगाने के भी हैं। और यहाँ यहाँ जो है क्या कहा जा रहा है कि वयक्ज़िफ़ूना, और ये लोग जो थे तीर चलाया करते थे, ये लोग दूर की कोड़ियां लाया करते थे। बिलगैबी पोशीदा मिन मकानिन, जगह से वही दूर। मुफस्सरीन कहते हैं कि यहाँ पे जो है इसके मानी क्या है कि इनके दिलों में दूर दूर तक कहीं अकीदा तौहीद नहीं था, कहीं अकीदा आखिरत नहीं था। तो दिलों में ईमान आखिरत तो थी नहीं, तो क्या करते थे, बस दूर दूर की ये बातें किया करते थे। अटकल पच्चू, तो अजाब देखने के बाद ईमान का इकरार कर रहे हैं, अब चाहते हैं कि कुछ कर लें, लेकिन पहले क्या किया कि इन्होंने कुफर किया, और वह यकजिफून बिलगैबी, और इनका हाल ये था कि तीर चलाते थे बिन देखे, बेतुकी हांकते थे, मिन मकानिन बईद, दूर जगह से, यानी क्योंकि ईमान तो था नहीं, तो इस्लाम का, दीन का, रसूल का, उनकी तालीमात का मजाक उड़ाते थे। जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहिर, काहिन, मजनू और दीवाना कहते, कुरान को जो है वो कहते कि ये तो पुराने जो है वो कहानियां हैं, किस्से हैं, और ईमान लाने वालों का भी मजाक उड़ाते। तो यहाँ पे जो है उनकी रविश जो है उसको बताया जा रहा है कि इन्होंने रसूल से, कुरान से जो कुफर किया था आखरत से, तो दूर दराज से बिन देखे ही बस ऐसी बातें मारते रहे कि कोई कयामत नहीं आनी, कोई हिसाब किताब नहीं है, कुरान कोई नहीं है, ये तो सब झूठ है, जादू है, रसूल नहीं है, ये तो जादूगर है, काहिन है, मजनू है, दीवाने हैं, और ऐसी बातें करने की इनके पास कोई दलील नहीं थी। वहीला बेना हुआ बेना मा यश्तहुना कमा फुइला बि अशियाइहिम मिन कब्ल, वहीला बेना हूं, और इनके दरमियान जो है वो हायल हो गई, पर्दा हायल कर दिया गया इनके दरमियान, वह बेना और दरमियान मा यश्तहुना, जो वो चाहते थे, यानी उस वक्त जिस चीज की ये तमन्ना कर रहे होंगे इससे महरूम कर दिए जाएंगे। अब आप देखें कि यहाँ पे मा यश्तहुना वो क्या चीज है जिसकी वो तमन्ना करेंगे, शीन हा वो, इसी से शहवत भी है, इसी से इश्तेहा भी है। तो शीन हा वो के मानी होते हैं कि ऐसी चीज जो इंसान हर कीमत पर चाहे, दिल उसके लिए मचले, दिल उसके लिए तड़पे, ऐसी ख्वाहिशात जिसकी फितरी ख्वाहिश हो। हजरत कतादा कहते हैं कि शक से बचो, जो शक की हालत में फौत होगा इस हालत में उठेगा, और जो यकीन पर मरेगा कयामत वाले दिन यकीन पर उठेगा। तो दुनिया में रहते हुए जो है ये क्या चाहते थे, दुनिया में अपने नफ्स की पूजा और दुनिया चाहते थे, लेकिन अब जो है अब इनका हाल क्या है, अब आखिरत में जब अल्लाह के सामने मुजरिम की हैसियत से होंगे, उस वक्त ये तमन्ना कर रहे होंगे, ये चाह रहे होंगे काश के इन्हें कहीं से ईमान मिल जाए, काश के अजाब से निजात हो जाए, काश के इनके दरमियान और इनकी उस ख्वाहिश के दरमियान पर्दा हायल कर दिया जाए। कौन सी ख्वाहिश, मा यश्तहुना, कौन सी ख्वाहिश, यानी कि उन्हें आखरत मिल जाए, या वो जन्नत उन्हें मिल जाए, या उन्हें अजाब से दूर कर दिया जाए। तो अब जो है अब तो इनकी ये तमन्ना पूरी नहीं हो सकती, तो क्या होगा, वहीला बैनहुम बैनमा यश्तहुना, और हीला हायल हो जाएगा, पर्दा हायल हो जाएगा, रुकावट बन जाएगी इनके दरमियान और इनकी इस ख्वाहिश के दरमियान। क्या ख्वाहिश? कि कहीं से ईमान मिल जाए, कहीं से कोई अमले स्वाले, कहीं से कोई निजात हो जाए, किसी तरह अजाब से बचा लिए जाए। अब इनकी ये ख्वाहिश खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं हो सकता। नो नो एनी मोर, नो मेकअप टेस्ट, कुछ भी नहीं है। कमा फोइला बे अशियाहिम मिन कबल, कमा फोइला जिस तरह किया गया, बे अशियाहिम इनके हम जिनसों के साथ। यहाँ पे जो अशिया एहिम है इसको आप सर्कल कर लें, इसका रूट है शीन या आयन, शिया होता है ना, तो उसी की जमा है अशिया। किसी शख्स के ताबे और हम ख्याल को जो है इसका शिया कहते हैं, यानी उसका फॉलर्स। तो यहाँ पे अशिया एहिम से मुराद इनके जो है हम जिन्स है, जैसे इन जैसे इनके इन जैसे अमल करने वाले। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिस तरह कमा फोइला किया गया, इसी तरह बेअशियाए ही मिनकब, जैसे कि इनके हम जिन्सों के साथ किया गया। यानी अब जिसकी ये तमन्ना करेंगे उससे ये महरूम कर दिए जाएंगे, जिस तरह के इनके दोस्त जो थे ना, जो कुफ्र करने वाले थे, शिर्क करने वाले थे, वो महरूम हो चुके हैं, वो जहन्नुम में डाल दिए जा चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह अब ये भी होंगे और इनका हाल होगा। इन्नहुम कानू फी शक्कि मुरीब, इसलिए कि ये बड़े गुमराह कुन शक में पड़े हुए थे। अच्छा अब आप देखें, शक किस चीज का कि कयामत कोई नहीं आने, शक किस चीज का कि किताब सच्ची नहीं है, शक किस चीज का कि रसूल नहीं है। तो उन्होंने सारी जिंदगी जो है वो शक में गुजार दी। आपने जो है वो सूरत अल बकरा जब पढ़ी थी तो आगाज में क्या पढ़ा था कि ला राय बफी दालिकल किताबो ला राय बफी, कि ये वो किताब है कि जिसके हदायत होने में कोई शक नहीं है। तो इनके हम जिन्स कौन थे? कौमे आद, समूद, अहले मदियन, अहले फिरौन, वो कौमे जिन्होंने अल्लाह अल्लाह के रसूल और कयामत के दिन का इनकार किया। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इन्होंने भी अपने हालात से कोई इबरत हासिल ना की तो इनका अंजाम भी उन्हीं जैसा होगा। इन्नहुम कानू फी शक मुरीब, ये बड़े गुमराह कुन शक में पड़े हुए थे। तो ये उन्हीं की तरह जो है वो उलझन में पड़े रहे, यहां तक के अल्लाह का अजाब जो है वो इन पर आ गया। तो अब आप देखें कि यहाँ पे जो है शक का लफ्ज जो है इस्तेमाल किया गया है। शक, शक के लिए कुरान में 6 लफ्ज आए हैं। पहला दर्जा है शक का। शक के मानी होते हैं दो नजरियात में से किसी एक को कम इल्मी की बिना पर तरजीह ना दे सकना। जैसे दो बातें हैं, किसी चीज के बारे में दो राय हैं, तो इंसान के पास जब इल्म नहीं होता तो उन दो में से किसी एक को तरजीह नहीं दे सकता, क्योंकि दलील नहीं है, कोई इल्म नहीं है, तो क्या होता है कि शक। जैसे अफिल्लाह शक्कुन फातिर समावाती वलर, क्या इस अल्लाह के बारे में शक करते हो जिसने जमीन आसमान को पैदा किया? दलील है लेकिन फिर भी तुम शक करते हो। दूसरा दर्जा है शुबे का, जैसे इन्नल बकरा तशाबहा अलैना, आप सूरत अल बकरा में पढ़ चुकी हैं। तीसरा दर्जा है मिरिया का, मिरिया, मिरिया जो है किसी मुसलमा हकीकत को जन्नी बातों से मशकूक करना, झगड़े की बुनियाद पे उसमें शक डाल देना। जैसे रब की मुलाकात के बारे में लोग मिरिया करते हैं, शक करते हैं। चौथा है मरीज, मरीज जो है दो चीजों का या दो नजरियात का आपस में गड़मड़ हो जाना, मिल जाना। जैसे दो टहनियां जब आपस में गुत्थम गुत्था होती है तब भी कहते हैं गुस्नुम मरीज, तो मामले का बहुत ही उलझ जाना, जैसे धागे उलझ जाते हैं, तो मरीज। कभी एक ख्याल, कभी दूसरा ख्याल, और फिर इंसान क्या है शक करता जाए। पांचवा है लबसा, लबसा जैसे जिस्म के ऊपर जब लिबास पहन लिया जाता है तो फिर जिस्म छुप जाता है ना, तो मुश्तबे हो जाना, पता नहीं चलता जिस्म के खदोखाल का, लबस जो है दो चीजों को आपस में गड़बड़ करना, दाखिल कर देना, जैसे सच में झूठ गड़बड़ कर दिया जाए। आखिरी दर्जा है रेब का। तो यहाँ पे कुरान में जो शक के लिए 6 लफ्ज आए हैं, पहला दर्जा शक का है और मुरीब का 6ठा दर्जा है, तो यहाँ पे मुरीब आया है जिसका रूट है रा या बा रेब, ऐसा शक जो खटका पैदा करे, जो दिल में बेचैनी पैदा करे, इस्तराब। तो फरमाया कि ये बड़े गुमराह कुन शक में पड़े हुए थे। किस चीज का शक? के जो है वो कोई आखिरत नहीं होनी। किस चीज का शक? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का, और उन्हें सारी जिंदगी इस बात का शक ही रहा कि कोई हिसाब किताब जो है वो नहीं है। तो ये थी सूरत सबा, और इसमें हमारे लिए अमल के उसूल क्या निकलते हैं। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो शुक्र गुजारी की रविश इख्तियार करने की दावत दी है। नंबर 2 ये बताया है कि दुनिया में माल दौलत और इकतदार जो है अगर किसी को मिल जाए तो ये तो बस अल्लाह इम्तिहान के लिए देता है, इसलिए नहीं कि कोई अपने आप को बड़ा समझकर और फिर खुदा बन बैठे या शिर्क करने लगे। तो याद रखें, दौलत का ज्यादा होना या कम होना ये अल्लाह की तरफ से जो है वो इम्तिहान है। फिर तीसरी चीज है कि फरिश्ते और जिन जो इंसान को नजर नहीं आते, तो लोग क्या करते हैं कि जैसे अहले मक्का करते थे कि शिर्क करना शुरू कर दिया। तो शिर्क करना जो है ये गुनाहे कबीरा है। तो जैसे आज के दौर में अगर देखें तो ख्वाहिशात नफ्स जो है इंसान उसकी पूजा करता है, जमाने के रस्म और रवाज, खानदान के अबाओ अजदाद के रस्म और रवाज, पीयर प्रेशर, दोस्त अहबाब के सब क्या कर रहे हैं। तो अहले मक्का के इनकार की एक बड़ी वजह जो थी वो क्या थी कि वो अपने माबूदों को छोड़ना नहीं चाहते थे। और आज जो है आज के इंसान को अगर आप देखें तो आज इंसान भी जो है उसने अपनी ख्वाहिशात नफ्स को अपना खुदा बना रखा है, और किसी तौर पे उसको छोड़ने के लिए इंसान आज का तैयार नहीं है। या फिर खानदान के रस्म और रवाज हैं, या फिर दोस्त अहबाब जो हैं तो उनकी बातें हैं, है ना। तो क्या करना चाहिए कि इस शक में से निकल कर कि अगर मैंने इन बातों को ना छोड़ा तो फिर अल्लाह के यहाँ हमारी जो है वो पकड़ होगी। और मैं आपको एक वाक्या सुनाती हूँ। ये थे अमर बिन जमूह, ये सहाबी थे मदीना में रहने वाले, बड़े अमीर थे। और उस जमाने में, जमाने जाहिलियत में जो सरदार होते थे या अमीर होते थे तो उनकी ये शान समझी जाती थी कि उनका अपना अलग से घर के अंदर एक बुत खाना हो। जैसे आज के मुसलमानों के यहाँ होता है ना कि आप नमाज के लिए कोई एक जगह मुकर्रर कर लेते हैं, तो उनके यहाँ क्या था कि खास तौर पर अलग से उनका घर के अंदर एक बुत खाना होता था, और सुबह शाम वो उसमें जाते हजरत अमर बिन जमूह और फिर उससे बरकत हासिल करते, और जो है वो बुत के पास जाकर जानवर भी ज़िबा करते, मुसीबत के वक्त उनसे दुआ मांगते। तो हजरत अमर बिन जम्मू जो थे इनके पास एक बुत था जिसका नाम मनात था, बड़ा कीमती नफीस लड़की बड़ा कीमती और नफीस लकड़ी का बनाया हुआ। हजरत अमर बिन जम्मू इससे गैर मामूली अकीदत रखते, बड़ा एहतमाम रखते थे, उसमें उसको खुशबू लगाते और उसका बड़ा साफ सुथरा रखने का ख्याल रखते। जब हजरत मुसअब बिन उमैर मदीना में थे और बहुत से लोग मुसलमान हो गए तो उस वक्त हजरत अमर बिन जम्मू की उम्र 60 साल से ज्यादा हो चुकी थी, और इस वक्त इनके 3 बेटे थे, मुआज, मुअव्वज और खल्लाद, और ये मुसलमान हो चुके थे, और इनकी वालदा हिंद भी मुसलमान हो चुकी थी। लेकिन अमर बिन जम्मू को पता नहीं था, तो अब उन्हें हर वक्त इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं मेरे बच्चे जो है ना ये भी जो है वो बुतों के खिलाफ ना हो जाएं और ये दीन जो है इसको इख्तियार ना कर लें। तो उन्होंने एक दिन अपनी बीवी से कहा कि हिंद, इस बात का ख्याल रखना, देखना कि जब तक हम कोई फैसला ठीक ना कर लें तो हमारे बेटे जो है ना, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए नुमाइंदे, जैसे उस जमाने में वहां पे जो लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे, हजरत मुसा बिन उमैर जो थे, ये गए थे ना वहां पे दावा करने के लिए मदीना में, रसूल अल्लाह के जाने से पहले गए थे, और उनकी दावत से बहुत से लोग मुतासिर हुए थे, बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। तो कहा कि लोग जो है ना इनसे मिल ना पाए, तो बीवी ने कहा कि मैं ख्याल रखूंगी। और फिर इसके बाद जो है, इसके बाद जो है वो बच्चों को, एक दिन बच्चे जो थे वो गए थे और उन्होंने जाकर सूरत फातिहा सुनी हजरत मुआज बिन जबल से, बड़े मुतासिर हुए, और वालदा को बता रहे थे तो बाप को कुछ अंदाजा हुआ, तो बड़ा घबराया, कहने लगा कि ये क्या हुआ कि ऐसे लग रहा है कि कोई ये बातें उनसे सुनकर आए हैं। तो बीवी ने कहा कि इन्होंने जो बातें सुनी है, अगर आप पसंद करें तो आपको भी सुना देते हैं। तो बहुत ही पहले परेशान हुए, फिर कहने लगे कि अच्छा चलो मुझे सुनाओ, तो सुनाए तो सही। फिर उन्होंने सूरत फातिहा सुनाई, बड़े मुतासिर हुए, कहने लगे बड़ा खूबसूरत हसी कलाम है। और बच्चों ने कहा कि सारा ही ऐसा है जो वो सुनाते हैं ना। तो वालिद कहने लगे कि मैं जब तक मनात से मशवरा ना कर लूं ना, तो उस वक्त तक हम और नहीं सुनेंगे और हम ईमान नहीं लाएंगे। तो अब आप देखें कि लकड़ी का एक बेजान टुकड़ा सुनने समझने बोलने की सलाहियत से महरूम, और वो क्या कह रहे थे कि मुझे अपने बुत से मशवरा करना है। अच्छा, मशवरा करने का तरीका क्या था अहले जाहिलियत में, कि बुत के पीछे कोई बूढ़ी औरत को खड़ा करते और बूढ़ी औरत के दिल में जो बात आती वो कह देती, और वो लोग कहते कि हमारे बुत की ये राय है, इस तरह वो करते थे। और अमर बिन जम्मू जो थे, एक पांव से लंगड़े थे। अब बुत के पास गए, बुत की तारीफ की, कहा मनात तुझे अच्छी तरह पता है कि ये जो दाई मक्का से हमारे पास आया है, ये तेरे अलावा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो सिर्फ इसलिए आया है कि हम तेरी इबादत से हमको रोक दे, और हम इसकी अच्छी बातें सुनने के बाद उनको मानने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि जब तक तुम मशवरा ना दो तब तुम्हें ही बताओ कि मैं क्या करूं। अब बुत था वो, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब फिर इन्होंने कहा कि लगता है तुम मुझसे नाराज हो गए हो, अच्छा मैं तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत देता हूं, फिर मुझे बताना। अब फिर ये कि बच्चों ने जब बाप का ये हाल देखा, और अकीदत मंदी भी, और उन्हें पता था कि हमारा बाप जो है बहुत सख्ती से बुत की पूजा करता है, तो उन्होंने रात के वक्त जो है बुत को उठाया और गड़े के अंदर डाल आया, वो गड़ा जिसमें कूड़ा करकट और गंदगी फेंकते थे, और वालिद को पता भी नहीं चला। अब सुबह उठे, देखा कि बुत तो मौजूद ही नहीं है, नाराज हुए कि तुम लोगों का बुरा हो, आज रात मेरे माबूद के साथ किसने ज्यादती की है। किसी ने कोई जवाब ना दिया, दौड़े भागे इधर उधर, आखिर वो गंदगी के गड़े में बुत जो था वो ओंधा उल्टा पड़ा हुआ मिल गया। वहां से लाए, उसको धोया, साफ सुथरा करके खुशबू लगाई, फिर उसको उसकी जगह पे रखा और कहा कि अल्लाह की कसम, अगर मुझे मालूम हो जाए कि तुम्हारे के साथ किसने ये हरकत की, तो मैं सख्त सजा दूंगा। दूसरी रात फिर लड़कों ने मनात के साथ वही हरकत की जो पिछली रात की थी। अब फिर उन्होंने तलाश किया, वही गंदगी के ढेर से लाए, धोया, खुशबू लगाई, बड़े ही अफसरदा और तंग आ गए, क्योंकि जो है वो गंदगी में मिलता था बुत ना। फिर उन्होंने क्या किया, रात को सोने से पहले एक तलवार बुत के गर्दन पर लटकाई और कहा, मनात अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि तेरे साथ ये हरकत कौन करता है। अब देखिए अल्लाह की कसम, अगर तेरे अंदर जरा भी खैर है तो अपना तो डिफेंड करना, ये तलवार अब मैं तेरे साथ लगा रहा हूं। फिर सोने के लिए चले गए। अब फिर क्या किया कि बच्चों ने फिर वो तलवार ले ली और बुत को उठाकर गंदे गड़े में डाला, और साथ उसके एक मुर्दा कुत्ता भी बांध दिया। सुबह उठे, फिर जो है वो देखा तो बुत मौजूद नहीं था, और फिर उसको ढूंढने के लिए निकले, और फिर कहने लगे जाकर, अल्लाह की कसम अगर तू वाकई माबूद होता तो कुत्ते के साथ बंधा हुआ गड़े में ना पड़ा होता। फिर इसके बाद उनके दिल में इस दीन के बारे में जो है वो शक पैदा होना शुरू किया हुआ, बुत परस्ती के बारे में, क्यों अल्लाह ताला ने उन्हें हदायत की तरफ जो है वो ले आया। और इनकी इनके बारे में बाकी बातें कि लंगड़े थे, चल नहीं सकते थे, और जब दीन इस्लाम कबूल कर लिया तो ये जाना चाहते थे गजवे में, गजवाए उहद में, तीनों बेटे तो जाने की तैयारी कर रहे थे। अब ये लंगड़े थे, माजूर थे, बूढ़े हो चुके थे, तो तो बेटे चाहते थे ये घर रहे ना। अब इस पर नाराज हो गए, बड़े नाराज हुए, रसूल अल्लाह के पास जाकर शिकायत की कि ए अल्लाह के रसूल, मेरे ये बेटे मुझे नेकी से महरूम रखना चाहते हैं। ये कहते हैं मैं लंगड़ा हूं और माजूर, और जिहाद में शरीक करना मेरे लिए जरूरी नहीं है। अल्लाह की कसम, मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी इस लंगड़ी टांग से चलता हुआ मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा। आप देखें अब ईमान कैसा है ना। तो उन्हें समझ आ गई कि बुत परस्ती की हकीकत कोई नहीं है, तो फिर ईमान कैसा था, कैसा यकीन था ना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके इस हाल को देखा तो साहब अपने उनके बेटों से कहा कि इसको जाने दो, मुमकिन है अल्लाह ने इनके लिए शहादत रखी हो। और फिर जब गए तो जाने से पहले दुआ भी मांगी हाथ उठाकर कि अल्लाह मुझे शहादत की दौलत अता करना, अल्लाह मुझे नाकाम और नामुराद और शहादत से महरूम ना लेकर आना। और फिर जंग के दौरान भी कह रहे थे कि मैं जन्नत का मुश्ताक हूं, मैं जन्नत का मुश्ताक हूं, और यहां तक के लड़ते लड़ते जो है वो शहीद हो गए। ये कौन थे? ये अमर बिन जमूह थे, कि पहले बुतों की पूजा करने वाले और फिर उसके बाद जो है वो यानी लंगड़ी टांग से जो है वो जाके गज़वाए उहुद में शिरकत की और दीवानावार जो है अपने आप को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया। तो प्यारी बहनों, शक की जिंदगी में और ईमान की जिंदगी में बड़ा फर्क होता है। अगर आपको जो है वो इस बात का शक हो कि सुबह जो है मुझे बच्चों को स्कूल नहीं भेजना, आप देखें आपकी शाम और होगी, आपकी रात और होगी, पता नहीं जाएंगे बच्चे के कि नहीं जाएंगे, और आप उसकी तैयारी नहीं करती। और जब आपको यकीन होता है कि हाँ कल स्कूल तो खुला हुआ है और बच्चे जाएंगे, तो आपका अंदाज कुछ और होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप आखिरत की तैयारी क्यों नहीं करते? तो उसकी वजह क्या है कि मरने के बाद दूसरी जिंदगी के हिसाब और किताब पर जो है वो यकीन नहीं है, उसका शक है। तो जब तक ये शक यकीन में मुब्तिला नहीं होगा, तो आखिरत की तैयारी जो है वो पीछे धरी रह जाएगी। कुरान मजीद जो हमारा होमवर्क है, जो हमारा सिलेबस है, फिर इसकी तैयारी में जो है इसको पसे पुश डालते रहेंगे। तो आइए अपने अंदर यकीन की कैफियत पैदा करें, अपनी जिंदगी को ईमान की दौलत से मालामाल करें और नेकियों में जो है वो आगे बढ़ें। और इस सिलसिले में सईद बिन आमिर, इनका नाम आपने सुना होगा कि बड़े ही मुत्तकी थे, और सईद बिन आमिर बहुत ही नेक थे, और हजरत उमरे फारूक रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में आपने इनको जो है वो कूफा का गवर्नर मुकरर किया था, और इनकी भी शिकायत पहुंची थी आपके पास। तो इनकी क्या शिकायत पहुंची थी? लोग आए थे और इनके बारे में जो है वो शिकायतें की थी। इनमें से एक शिकायत तो ये थी कि जब तक खूब दिन नहीं चढ़ जाता तो ये अपने घर से बाहर नहीं निकलते। इनकी एक शिकायत जो थी वो ये थी। दूसरी शिकायत ये थी कि ये रात के वक्त किसी का जवाब नहीं देते। तीसरी शिकायत ये थी कि ये महीने में एक बार दिन भर घर से बाहर नहीं निकलते। अब आप सोचें, उमरे फारूक रजी अल्लाह नो के मुकरर करदा गवर्नर हैं, और हजरत उमर रजी अल्लाह नो की आदत थी कि अपने गवर्नरों की बड़ी फिक्र करते थे, अपने लोगों की, और लोगों से उनके बारे में पूछते रहते थे कैसा काम कर रहे हैं। आपने हजरत सईद बिन आमिर से पूछा कि लोगों की शिकायतों के बारे में क्या कहते हो, कि जब तक खूब दिन नहीं चढ़ जाता आप अपने घर से नहीं निकलते। हजरत सईद रजी अल्लाह अन्हो थोड़ी देर खामोश रहे, फिर बोले अल्लाह की कसम मैं इस बात को जाहिर नहीं करना चाहता था, मगर इसको जाहिर किए बगैर चारा नहीं है। बात यह है कि मेरे घर में कोई खादिमा नहीं, अब गवर्नर है, कूफे के गवर्नर। कहा इसलिए जरा सवेरे उठता हूं तो पहले आटा गूंथता हूं, फिर थोड़ी देर इंतजार करता हूं ताकि उसका खमीर उठ जाए, फिर रोटियां पकाता हूं, इसके बाद वुजू करके लोगों की जरूरत के लिए बाहर निकलता हूं। दूसरी शिकायत क्या थी कि ये रात के वक्त किसी का जवाब नहीं देते। इसका उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह की कसम मैं इस बात को भी जाहिर करना पसंद नहीं करता था, मैंने दिन के औकात लोगों के लिए और रात अपने रब के लिए मखसूस कर रखी है। सुभान अल्लाह, आप देखें तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा दिन के शाह सवार थे और रात के वो राहिब थे। रात के वक्त वो अल्लाह के सामने खड़ा होते थे, रियाजारी करते थे और इबादत करते थे। अब आप देखें कि आपका दिन कैसा है और आपकी रात कैसी है, मेरा दिन कैसा है और मेरी रात कैसी है, हम क्या करते हैं। उनको यकीन था ना हमें मरना है, अल्लाह के पास जाना है, और ये यकीन की कैफियत उन्हें जो है वो रात के वक्त नरम और गर्म बिस्तर से उठा देती थी। वो जागते थे, शब्बेदारी करते थे। तीसरी शिकायत ये थी कि महीने में एक बार दिन भर घर से बाहर नहीं निकलते। कहा मेरे पास कोई खादिम नहीं और जिस्म के इन कपड़ों के सिवा मेरे पास कोई कपड़ा नहीं, मैं इनको महीने में सिर्फ एक बार धोता हूं और इनके खुश्क होने का इंतजार करता हूं और सूखने के बाद दिन के आखिरी हिस्से में इन्हें पहनकर बाहर आता हूं। अब इसके बाद लोगों की आखिरी शिकायत रह गई और वो ये थी कि बैठे बैठे इनको गशी का दौरा पड़ जाता है, बेहोश हो जाते हैं। तो इसका उन्होंने जवाब दिया कि खुबैब बिन अदी के कत्ल के मौके पर मैं मक्का में मौजूद था, मैं उस वक्त मुशरिक था और छोटा सा था, और जो लोग खड़े होकर हजरत खुबैब बिन अदी का सूली पे चढ़ने का और उनके जिस्म के अजा के काटे जाने का तमाशा देख रहे थे, उनमें मुशरिकीन में मैं भी शामिल था। इनके जिस्म का एक एक उजू जब काटा जा रहा था और हर उजू काटते वक्त अहले मक्का पूछते थे कि खुबैब क्या तुम पसंद करते हो कि आज तुम्हारी जगह पर मोहम्मद होते और तुम इस तकलीफ से निजात पाते, तो वो जवाब देते अल्लाह की कसम मुझे तो ये भी पसंद नहीं कि मैं इत्मीनान और सुकून के साथ अपने घर वालों में रहूं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव में एक कांटा भी चुभ जाए। हजरत सईद बिन आमिर रजी अल्लाह उन्होंने कहा अल्लाह की कसम जब मुझको वो मंजर याद आता है और साथ ही ये याद आता है कि मैंने उस वक्त हजरत खुबैब की मदद क्यों ना की, तो मुझे शदीद किस्म का खतरा लाहक होता है और मैं सोचता हूं अगर अल्लाह ने मेरी इस कोताही को माफ ना किया और अल्लाह ने अगर इस पर मुझे पकड़ लिया तो मेरे ऊपर गशी तारी हो जाती है। तो आप देखें ये थे सईद बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हो, और जिनको हजरत उमर ने एक दफा 1,000 दिनार भेजे ताकि वो अपनी जरूरियात को पूरा करें। तो इनकी बीवी ने इन दिनारों को देखा तो बोली कि अल्लाह का शुक्र है कि इसने हमको अब आपकी खिदमत से बेनियाज कर दिया, अब आप इस रकम से हमारे लिए एक गुलाम और खादमा खरीद दीजिए। ये सुनकर हजरत सईद ने कहा क्या तुमको इससे बेहतर चीज की ख्वाहिश नहीं, इससे बेहतर क्या चीज है, बीवी बोली। कहा कि ये रकम हम उसके पास जमा कर दें जब वो जब हम यानी हम ये रकम उसको दे दें जो हमसे ज्यादा इसका जरूरतमंद हो, और हमें ये रकम वो उस वक्त वापस करे जब हम इसके ज्यादा जरूरतमंद हो। तो बीवी ने पूछा वो कैसे, तो कहा कि हम ये रकम अल्लाह ताला को कर्जे हसन दे देते हैं। और आप देखें कि फिर यानी अल्लाह के रास्ते में जब उसको दे देंगे तो अल्लाह हमें कब इसकी जजा देगा, जब हम इसके बहुत जरूरतमंद होंगे। और बीवी ने कहा कि हाँ ये बेहतर है, अल्लाह आपको इसकी जजाए खैर दे। तो प्यारी बहनों कैसा यकीन था सहाबा और सहाबियात को कि हजरत सईद ने इन दिनारों को बहुत सी थैलियों में रखकर अपने घर के एक आदमी से कहा कि इन्हें फलां कबीले की बेवा, फलां कबीले के यतीम, फलां कबीले के मिस्कीन और फलां कबीले के हाजतमंदों में तकसीम कर दो। और ये थे सईद बिन आमिर जिनसे अल्लाह राजी हो, ये उन लोगों में से थे खुद मोहताज और जरूरतमंद और दूसरों को अपने ऊपर तरजीह दी, और इन्हें आखिरत की पकड़ का इतना एहसास था कि जमाने शिर्क और कुफर में जो गलतियां की थी उस पर भी बैठकर रोते थे और बेहोश हो जाते थे। तो आइए अपने अंदर अकीदा आखिरत पैदा करें, आइए शक की कैफियत से निकलकर यकीन और ईमान की दौलत से मालामाल हो, आइए आखिरत की तैयारी करें, अपना वक्त अपनी जवानी दौलत सेहत उम्र हकूमत कुर्सी, आप जिस भी कुर्सी पर बैठी हैं वो बीवी की है या वो एक डॉक्टर की है और एक टीचर की है, तो आइए अल्लाह को राजी करें और अल्लाह की बंदगी करें। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.